दूसरा कुरिन्थियों अध्याय एक। पौलुस की तरफ से, जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और हमारे भाई तिमोथियुस की तरफ से परमेश्वर के उस चर्च के नाम जो कुरिन्थियुस में है, और सारे अखाया के सब पवित्र लोगों के नाम, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया के पिता और सब तरह की शांति के परमेश्वर हैं। परमेश्वर हमारी सभी परेशानियों में हमें तसल्ली देते हैं, ताकि हम उन्हें भी तसल्ली दे सकें जो किसी तरह की परेशानी में से गुजर रहे हैं। क्योंकि जैसे हम मसीह के दुखों के साथ अधिक गुजरते हैं, वैसे ही हम शांति में मसीह के द्वारा ज्यादा सहभागी होते हैं। यदि हम क्लेश से गुजरते हैं, तो यह तुम्हारी तसल्ली और उद्धार के लिए है। यदि हमें तसल्ली मिलती है, तो यह तुम्हारी तसल्ली के लिए है। उसी के प्रभाव से तुम धीरज के साथ उस सताव को सह लेते हो, जिन्हें हम भी सहते हैं। तुम्हारे बारे में हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जिस तरह हमारे सताव में हिस्सेदार हो, ठीक उसी तरह हमारी तसल्ली में भी हो। हे भाइयों बहनों, हम यह नहीं चाहते हैं कि तुम उस सताव के बारे में अनजान रहो जो हमने एशिया में सहा था। हमारे ऊपर ऐसा दबाव आ पड़ा था जिसको सहना बहुत मुश्किल था। हमें तो ऐसा लगता था कि हम जिंदा ही नहीं बचेंगे। हमें ऐसा लगता था कि हम पर मौत की आज्ञा हो चुकी थी, ताकि हम अपने ऊपर भरोसा न रखें, लेकिन केवल परमेश्वर पर, जो मरे हुओं को जिंदा करते हैं। उन्हीं ने हमें मौत की बड़ी मुसीबत से बचाया और बचाते रहते हैं। हमारा भरोसा उन्हीं पर है कि आने वाले समयों में भी वही हमको बचाते रहेंगे। तुम भी मिलकर विनती के द्वारा हमारी मदद करो, कि जो अनुग्रह हमें तुम्हारे विनती करने से मिला, उसके कारण बहुत लोग हमारी ओर से परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें। हम अपने विवेक की इस गवाही के कारण खुश होते हैं कि दुनिया में और खासकर तुम्हारे बीच हमारा चालचलन परमेश्वर के लायक पवित्र और सच्चाई के साथ था। वह दुनियावी ज्ञान से नहीं, लेकिन परमेश्वर की मदद से था। हम तुम्हें और कुछ नहीं लिखते हैं, सिर्फ वही जो तुम पढ़ते या समझते हो, और हमें आशा है कि आखिर तक समझते रहोगे। जैसा तुम में से कितनों ने समझ लिया है कि जैसे हम तुम्हारी खुशी का कारण हैं, वैसे ही तुम भी प्रभु यीशु के दिन हमारे लिए खुशी का कारण ठहरोगे। मैं ये चाहता हूं कि पहले तुमसे भेंट करूं, ताकि तुम्हें एक और दान मिले। ये भी कि मैं तुम्हारे पास से होते हुए मकिदुनिया को जाऊं और फिर तुम्हारे पास वापस लौट आऊं, और तुम मुझे यहूदिया की यात्रा के लिए रवाना कर दो। इसलिए मैंने जो यह जल्दबाजी की है, तो क्या मैं दुविधा में था? या जो करना चाहता हूं वह दुनियावी सोच विचार के हिसाब से था, कि एक ही समय में हां हां और नहीं नहीं भी करूं? जिस तरह परमेश्वर भरोसेमंद है, उसी तरह तुम्हारे लिए हमारी बातों में हां और नहीं एक साथ नहीं पाए जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह, जिनका संदेश सिल्वानुस, तिमोथियुस और मैंने तुम्हें दिया, उसमें कभी हां और कभी ना दोनों नहीं थे, लेकिन उसमें हां ही हां था। परमेश्वर में जितने भी वायदे हैं, वे सभी उन्हीं में हां के साथ हैं। इसलिए उनके द्वारा वे पूरे भी किए जाएंगे, ताकि हमारे द्वारा परमेश्वर को आदर सम्मान मिले, जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में मजबूत करते हैं, और जिन्होंने हमारा अभिषेक किया है वह परमेश्वर हैं। उन्होंने हम पर मुहर भी लगा दी है, और पवित्र आत्मा को बयाने में हमारे मनों में दिया है। परमेश्वर को गवाह ठहराकर मैं कहता हूं कि अब तक मैं कुरिन्थियुस में इसलिए नहीं आया, ताकि तुम कठोर डांट फटकार से बच जाओ। यह नहीं कि हम तुम्हारे विश्वास के बारे में तुम पर हक जताना चाहते हैं, लेकिन हम तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हारे साथ काम करते हैं, क्योंकि तुम विश्वास ही से बने रहते हो। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय दो। मैं यह इरादा कर चुका था कि आने पर तुम लोगों को उदास न करूं, क्योंकि यदि मैं तुम्हें उदास करूं, तो मेरे मन को खुश करने वाला कौन होगा? केवल वही जिसे मैंने उदास किया। मैंने यही बात तुम्हें इसलिए लिखी कि कहीं मेरे आने पर जिनसे खुशी मिलनी चाहिए मैं उनसे दुख पाऊं। मुझे तुम सभी पर इस बात का भरोसा है कि जो मेरी खुशी है वह तुम सबकी है। मैंने बड़े दुख से, मन की पीड़ा से बहुत आंसू बहा बहा कर तुम्हें लिखा था, इसलिए नहीं कि तुम्हें दुख हो, लेकिन इसलिए कि तुम मेरे उस प्रेम को जानो जो तुम्हारे लिए है। यदि तुम में से किसी ने निराश किया है तो केवल मुझे ही नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तुम सभी को निराश किया है। ऐसे व्यक्ति के लिए वह सजा बहुत है जो बहुमत से ठहराई गई। अच्छा यह है कि उसका अपराध माफ किया जाए और उसे तसल्ली भी दी जाए, ताकि ऐसा इंसान बहुत ज्यादा निराशा से न भर जाए। इसलिए मेरी तुमसे यह विनती है कि उसे अपने प्रेम का सबूत दो, क्योंकि मैंने तुम्हें इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें जांच लूं कि तुम मेरी सभी बातों को मानने के लिए तैयार हो या नहीं। जिस किसी का तुम कुछ माफ करते हो उसे मैं भी माफ करता हूं, क्योंकि मैंने भी जो माफ किया है तो वह तुम्हारी वजह से मसीह की जगह में होकर किया है, ताकि शैतान हमें धोखा न दे सके, क्योंकि उसकी चतुराई से हम अनजान नहीं। हालांकि प्रभु ने मेरे लिए एक नया दरवाजा खोला है कि मैं दोबारा आ सका, लेकिन मेरा मन बेचैन था क्योंकि मेरे भाई तीतुस से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। इसलिए मैंने विदाई ली और मकीदुनिया की ओर बढ़ गया। लेकिन परमेश्वर की बड़ाई हो जो मसीह में हमेशा हमको जीत के जुलूस में लिए चलते हैं और अपने ज्ञान की खुशबू हमारे द्वारा सब जगह फैलाते हैं, क्योंकि हम मसीह के निकट मुक्ति पाने वालों और मुक्ति न पाने वालों दोनों तरह के लोगों के लिए मसीह की खुशबू हैं। कुछ के लिए मरने के निमित्त मौत की गंध और कुछ के लिए जीवन के निमित्त जीवन की खुशबू। क्या कोई इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने के लायक है? क्योंकि हम उन बहुत से लोगों की तरह नहीं हैं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, लेकिन मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को मौजूद जानकर मसीह में बोलते हैं। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3। क्या हमने फिर अपनी बड़ाई करनी शुरू कर दी, या हमें दूसरे लोगों की तरह सिफारिश की चिट्ठियां तुम्हारे पास लानी हैं या तुमसे लेनी हैं? हमारे मनों पर लिखी हुई चिट्ठी तो तुम ही हो, सब लोग उन्हें पहचानते और पढ़ते हैं। यह दिख ही रहा है कि तुम मसीह की चिट्ठी हो, जिसको हम सेवकों ने न तो स्याही से न पत्थर की पटियाओं पर, लेकिन जीवित परमेश्वर के आत्मा से दिल की मांस रूपी पटियों पर लिखा है। मसीह में होकर परमेश्वर पर हमारा ऐसा ही भरोसा है। यह नहीं कि हम अपने आप में इस लायक हैं, हमारी योग्यता के स्रोत तो परमेश्वर हैं। उन्हीं ने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य बनाया, शब्द के सेवक नहीं लेकिन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है किंतु आत्मा जीवन देता है। यदि मौत की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे इतने प्रकाश से दमक रही थी कि मूसा के चेहरे पर के तेज के कारण जो कम होता जा रहा था इसराइली उसके चेहरे को देख तक नहीं सकते थे, तो आत्मा की वाचा और ज्यादा तेज से भरी क्यों न होगी? क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेज से भरी थी तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और अधिक तेज से भरी क्यों नहीं होगी? नई वाचा की भव्य महिमा से यदि पुरानी वाचा की महिमा की तुलना की जाए तो उसके सामने पुरानी वाचा ठहर ही नहीं सकती, क्योंकि जब तेजोमय की चमक कम होती जाती थी तो जो स्थिर रहेगा वह और ज्यादा चमक से क्यों नहीं दमकेगा? इसलिए ऐसी आशा रखकर हम हिम्मत से बोलते हैं, मूसा की तरह नहीं जिसने अपने चेहरे पर कपड़ा डाल लिया था ताकि इसराइली उस कम होते हुए तेज के समाप्त होने को न देख सके, लेकिन उनकी अक्ल मारी गई क्योंकि आज तक मूसा द्वारा पहुंचाया नियम शास्त्र पढ़ते समय उनके मनों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, लेकिन मसीह में वह उठ जाता है। आज तक जब कभी मूसा की किताब पढ़ी जाती है तो उनके मनों पर पर्दा पड़ा रहता है, लेकिन जब कभी उनका दिल प्रभु की तरफ मुड़ेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहीं आजादी है। लेकिन जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का तेज इस तरह दिखता है जिस प्रकार आईने में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उस तेजस्वी रूप में थोड़ा थोड़ा बदलते जाते हैं। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें ये सेवा मिली तो हम हार नहीं मानते, लेकिन हमने शर्म के छिपे हुए कामों को छोड़ दिया है। हम न चालाकी से जीते हैं और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, लेकिन हम सच्चाई को सामने रखकर परमेश्वर के सामने हर एक इंसान के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। लेकिन यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह बर्बाद हो जाने वाले लोगों के कारण है, उन विश्वास न करने वालों के लिए जिनकी बुद्धि को इस दुनिया के ईश्वर ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो परमेश्वर के प्रतिरूप हैं उनके प्रकाश में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमक सके। क्योंकि हम अपना नहीं लेकिन यीशु मसीह का संदेश देते हैं कि वह प्रभु हैं। हम अपने बारे में बताते हैं कि हम यीशु मसीह के कारण तुम्हारे सेवक हैं, इसलिए कि परमेश्वर ही हैं जिन्होंने कहा अंधेरे में रोशनी हो जाए। उन्होंने ही इस रोशनी को हमारे दिलों में चमकाया ताकि हम प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर के व्यक्तित्व को देख सकें। हमारे पास यह खजाना मिट्टी के बर्तनों में है ताकि यह मालूम पड़ जाए कि यह असाधारण सामर्थ्य परमेश्वर की ओर से है और हम इसके स्रोत नहीं हैं। हम सभी ओर से सताव सह रहे हैं लेकिन पिस नहीं गए, उलझन में तो पड़ते हैं लेकिन निराश नहीं होते। हमें सताया तो जाता है लेकिन त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं लेकिन मिट नहीं जाते। जिस तरह से यीशु मारे गए उसी तरह हर समय हम मारे जाने के खतरे में रहते हैं, ताकि यीशु का जीवन हमारी देह में दिखाई देता रहे। हम जीते जी हमेशा यीशु की वजह से मौत के हवाले किए जाते हैं, ताकि यीशु का जीवन हमारी मरणशील देह में प्रकट होता रहे। हम तो मौत का सामना करते रहते हैं लेकिन तुम्हें आत्मिक लाभ होता है, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके बारे में लिखा है,
मैंने विश्वास किया इसलिए मैंने कहा।
इस कारण हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को झिलाया वही हमें भी यीशु में झिलाएंगे। वो हमें तुम्हारे साथ अपनी उपस्थिति में खड़ा होने देंगे। सब कुछ तुम्हारे फायदे के लिए ही है। जैसे जैसे परमेश्वर का अनुग्रह ज्यादा लोगों तक पहुंचता जाता है, धन्यवाद में भी बढ़ती होती जाती है, इस तरह से परमेश्वर की महिमा अधिक होती है। इसलिए हम हताश नहीं होते, हालांकि हमारी देह कमजोर होती जा रही है फिर भी हमारा भीतरी जीवन दिन प्रतिदिन नया होता जा रहा है, क्योंकि हमारा क्षण भर का कम सताव हमारे लिए बहुत जरूरी और सदाकाल की महिमा उत्पन्न करता जाता है। क्योंकि हम दिखने वाली बातों पर नहीं लेकिन जो नहीं दिखता उस पर अपना ध्यान लगाए हुए हैं, क्योंकि देखी चीजें कुछ समय की हैं और जो दिख नहीं रहा है वह सदाकाल के लिए है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5। हमें मालूम है कि तंबू की तरह हमारी ये देह उतारी और लपेटी जाएगी। हमें परमेश्वर की ओर से एक नया घर मिलेगा, एक ऐसा घर जिसे हाथों से बनाया नहीं गया होगा लेकिन अनंतकालिक घर। इस तंबू में हम कराहते हैं और स्वर्गिक घर को पहनने के लिए लालायित रहते हैं। हम स्वर्गिक देह को जरूर पहनेंगे, हम मात्र देह रहित आत्मा नहीं होंगे। इस देह में हम बोझ से दबे कराहते रहते हैं, ये नहीं कि हम मर जाना चाहते हैं ताकि इस पहनी हुई देह को उतार सकें, लेकिन यह कि हम अपनी नई देह को पहनना चाहते हैं ताकि इस मरणहार देह को अमरता निगल ले। जिसने हमें इस उद्देश्य के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, उन्हीं ने हमें पवित्र आत्मा बयाने में दिया है, इसलिए हम हमेशा निडर रहते हैं। हम जानते हैं कि जब हम इस धरती पर जिंदा हैं तो हम यीशु के साथ नहीं हैं। बिना देखे हुए सिर्फ भरोसा रखकर ही हम जीवित हैं। हम उमंग से भरे हुए हैं और हमारी चाह तो ये है कि इस देह से मुक्त हो जाएं और प्रभु के साथ ही रहें, चाहे हम इस देह में हैं या नहीं। खास बात है प्रभु को खुश करना। हम सभी को एक दिन प्रभु यीशु के इंसाफ के तख्त के सामने खड़े होना पड़ेगा, ताकि देह में किए गए अच्छे और बुरे कामों का हिसाब दें। इसलिए कि हम जानते हैं कि प्रभु के डर में जीना क्या है, हम लोगों के सामने सच्चाई रखते हैं। परमेश्वर और तुम्हें मालूम है कि इसमें हमारी नियत क्या है। ऐसा कहकर हम तुम्हारी वाहवाह की अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम हमारे ऊपर घमंड कर सको, ताकि उनको जवाब दे सको जो दिल के भीतर की बातों के बजाय दिखावटी बातों पर मन लगाते हैं। यदि हम जोशीले हैं तो परमेश्वर के लिए हैं, यदि हमारा मन ठिकाने पर है तो इससे तुम्हें फायदा है। मसीह का प्रेम हमको विवश कर देता है और हम इस बात के कायल हैं कि यीशु मर गए थे, इसलिए हम भी अपने पुराने जीवन के लिए खत्म हो चुके हैं, और वह इसलिए सबके लिए मरे कि जो जीवित हैं वे भविष्य में अपने लिए न जिएं, लेकिन उनके लिए जो उनके लिए मरे और फिर से जी उठे। इसलिए अब से हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे, हालांकि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, लेकिन अब से ऐसा नहीं जानेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह पर विश्वास ला चुका है तो वो एक नई रचना है, पुरानी बातें बीत गईं और सब बातें नई हो गई हैं। ये सभी बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिन्होंने यीशु मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल कर लिया। उन्हीं ने हमें यह काम दिया कि हम दूसरे लोगों का संबंध परमेश्वर से करा दें। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और लोगों के अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और यही मेल के संदेश को देने का काम हमारे सुपुर्द कर दिया। इसलिए हम परमेश्वर के राजदूत हैं, मानो हम मसीह में होकर बोल रहे हैं। परमेश्वर के साथ अच्छे संबंध बना लो। जो पाप से अछूते थे उन्हें परमेश्वर ने हमारे लिए पाप बना दिया, ताकि हम उनमें होकर परमेश्वर की सच्चाई बन जाएं। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6। इसलिए कि हम सभी साथ में काम करने वालों की तरह एक साथ मिलकर परमेश्वर का काम कर रहे हैं, हम ये भी निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह को बेकार न जाने दें। परमेश्वर ने कहा था,
सही वक्त पर मैंने तुम्हारी सुन ली और मुक्ति के दिन मैंने तुम्हारी मदद की।
देखो, यही वह सही वक्त है, अभी ही मुक्ति का समय है। हम इस तरह जीवन जी रहे हैं कि किसी बात में किसी के लिए रुकावट का कारण न बने, ये भी कि किसी को हमारी सेवा में कोई खोट न दिखे। सब कुछ जो हम करते हैं, हम ये दिखाते हैं कि हम परमेश्वर के सच्चे सेवक हैं, बड़े धीरज में, सताव में, गरीबी में, संकटों में, पिटाई में, जेलखाने में डाले जाने में, दंगों में, परेशानियों में, मेहनत करने में, जागने में, भूखा रहने में, पवित्रात्मा में, ज्ञान में, धीरज में, कृपालुता में, पवित्रात्मा में, सच्चे प्रेम में, सच्चाई के संदेश में, परमेश्वर की शक्ति में, दाएं बाएं आत्मिक हथियारों को लेकर, इज्जत और बेइज्जती में, यश और अपयश में, बदनामी और बड़ा नाम पाने में, धोखा देने वालों की तरह दिखते हैं लेकिन ऐसे हैं नहीं, अनजानों की तरह हैं लेकिन मशहूर हैं, मरते हुओं की तरह हैं लेकिन फिर भी जिंदा हैं, सजा पाए हुओं की तरह हैं फिर भी जान से मारे नहीं जाते, शोक करने वाले दिखते हैं लेकिन हमेशा खुश रहने वाले हैं, दिखने में गरीब हैं लेकिन दूसरों को अमीर बना देते हैं, हम दिखने में फक्कड़ हैं लेकिन सब कुछ रखते हैं। हे कुरिन्थियों, हमने सब कुछ ईमानदारी से कह डाला है, हमारा दिल तुम्हारे लिए खुला हुआ है, हमने अपने प्रेम में किसी तरह की कमी नहीं रखी है, लेकिन तुम बहुत नाप तोल कर प्रेम दिखाते हो। तुम्हें अपने बच्चों की तरह जानकर मैंने तुमसे बातचीत की, तुम भी खुले दिल से प्रेम दिखाओ। जो लोग मसीह पर विश्वास नहीं लाए हैं उनके साथ साझे में कुछ मत करो, इसलिए कि धार्मिकता और अंधकार में एकता कैसे बनी रह सकती है, या रोशनी और अंधेरा एक साथ कैसे आ सकते हैं? मसीह और शैतान कैसे एक सहमति बना सकते हैं? या मसीही और गैर मसीही का क्या संबंध? क्या परमेश्वर के भवन और मूर्तियों के बीच कोई समझौता संभव है? क्योंकि हम परमेश्वर का जीवित भवन हैं, जैसा कि परमेश्वर ने कहा भी था,
मैं उनमें रहूंगा और उनके बीच चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होवेंगे। इसलिए प्रभु कहते हैं, उनके बीच में से निकलो और अलग हो जाओ, और जो कुछ अशुद्ध है उसे मत छुओ, तब मैं तुम्हें अपनाऊंगा। मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे, सर्वशक्तिमान प्रभु का कहना यही है।
दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 7। हे प्रियो, इसलिए कि हमें कीमती वायदे मिले हैं, तो आओ हम उन सब बातों से अपने आप को शुद्ध करें जो हमारी देह और आत्मा को अशुद्ध कर सकती हैं। इस तरह से हम परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता की ओर बढ़ें। हमारे लिए अपने दिलों को खुला रखो। हमने न किसी का बुरा किया, न किसी को बर्बाद किया, और न ही किसी से फायदा उठाया। मैं तुम्हें दोषी ठहराने के लिए ये नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैं पहले ही से कह चुका हूं कि तुम हमारे दिल में इस तरह बस गए हो कि हम तुम्हारे साथ जीने और मरने को तैयार हैं। मुझे तुम पर काफी भरोसा है और घमंड भी। हमारी सारी परेशानियों के बावजूद तुमने हमें साहस दिया और खुश किया। जब हम मकिदुनिया आए थे, हमारी देह को कुछ सुकून नहीं मिला। हम चारों तरफ से सताव से घिरे हुए थे, बाहर संघर्ष था और मन में डर। लेकिन परमेश्वर ने, जो हताश हुए लोगों की हिम्मत बढ़ाते हैं, तीतुस के आने पर हमारी हिम्मत बढ़ाई। सिर्फ उसके आने से ही हमें प्रोत्साहन नहीं मिला, लेकिन इस कारण भी कि तुमने उसका साहस बढ़ाया था। मेरी खुशी और ज्यादा इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि उसने हमारे प्रति तुम्हारी लगन, तुम्हारे दुख और हमारे लिए चिंता के बारे में भी खबर दी। क्योंकि हालांकि मैंने अपने पहले खत से तुम्हें शोकित किया था, लेकिन उससे पछताता नहीं जैसा कि पहले पछताता था, क्योंकि मैं देखता हूं कि उस पत्र से तुम्हें जो शोक हुआ वह थोड़ी देर के लिए ही था। अब मैं खुश हूं, लेकिन इसलिए नहीं कि तुम्हें शोक पहुंचा, लेकिन इसलिए कि तुमने उस शोक की वजह से मन बदला। क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था, न कि हमारी तरफ से, ताकि तुम्हें किसी बात में नुकसान न पहुंचे। जो शोक परमेश्वर की ओर से होता है वह मन बदलाव लाता है, और इसका परिणाम उद्धार है। ऐसा शोक हमारे अंदर पछतावा नहीं उत्पन्न करता है, लेकिन दुनियावी शोक मौत लाता है। देखो, इस परमेश्वर की ओर से शोक ने तुम्हारे जीवन में कितना बदलाव पैदा किया है। ऐसी तत्परता अर्थात अपने को निर्दोष साबित करने की चाह, कितना रोष, कितना डर, कितनी लालसा, कितना जोश तथा सजा देने की इच्छा उत्पन्न हो गई है। तुमने इस तरह से यह साबित कर दिया है कि तुम इस बात में निर्दोष हो। तुम्हें लिखे जाने में मेरा उद्देश्य यह नहीं था कि किसने अन्याय किया, किसके साथ अन्याय हुआ, इस पर गौर किया जाए, लेकिन यह कि परमेश्वर के निगाह में यह साफ दिख जाए कि तुम हमारे प्रति कितने गंभीर हो। इसलिए हमें तसल्ली मिली। इसके साथ ही तीतुस की खुशी देखकर हम और भी आनंदित हो उठे, क्योंकि तुम सबसे उसका जी हरा भरा हो गया था। इसलिए कि यदि मैंने तुम्हारे बारे में उसके सामने कुछ घमंड दिखाया तो शर्मिंदा न हुआ, परंतु जिस तरह से हमने तुमसे सब बातें सच सच कह दी थीं, वैसे ही हमारा घमंड दिखाना तीतुस के सामने भी सच निकला। जब उसको तुम्हारे आज्ञाकारी होने की याद आती है कि कैसे तुमने उसे आदर सम्मान से अपनाया, तो उसका तुम्हारे प्रति प्यार उमड़ पड़ता है। मुझे बहुत खुशी है क्योंकि मैं तुम पर पूरा भरोसा रख सकता हूं। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 8। हे भाइयों बहनों, हम अब परमेश्वर की उस महान कृपा के बारे में बताना चाहते हैं जो मकिदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है। हर तरह के क्लेश द्वारा उनकी जांच में उनकी बड़ी खुशी और भारी गरीबी में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। मैं उनके बारे में साक्षी देता हूँ कि उन्होंने अपनी योग्यता से अधिक दिया और वह भी अपनी मर्जी से। इस दान में और पवित्र लोगों की मदद करने में हिस्सेदार बनने के लिए उन्होंने बार बार हमसे विनती की। हमारी आशा से बढ़कर उन लोगों ने पहले अपने आप को प्रभु के प्रति समर्पित किया और बाद में परमेश्वर की इच्छा से हमारे प्रति भी अपना समर्पण किया। इसलिए हमने तीतुस को सलाह दी कि जैसी शुरुआत उसने पहले की थी वैसी ही तुम्हारे बीच में इस दान के काम को भी पूरा कर ले। इसलिए जिस तरह तुम लोग हर दायरे में विश्वास, वचन, ज्ञान, सब तरह की कोशिश और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी आगे बढ़ते जाओ। मैं आज्ञा की तरह नहीं लेकिन दूसरों के जोश से तुम्हारे प्यार की सच्चाई को परखने के लिए कहता हूँ। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हो कि वो धनी होने के बावजूद तुम्हारे लिए गरीब बन गए ताकि उनकी गरीबी से तुम समृद्ध हो जाओ। इस बात में मेरी सलाह यह है, यह तुम्हारे लिए फायदेमंद है कि जो कुछ तुमने पिछले साल शुरू किया और जिसके चाहने में भी तुम ही प्रथम थे, तुम्हारे लिए अच्छा यह है कि अब यह काम तुम पूरा करो। तुम्हारी शुरू में दिखाई गई तत्परता तुम्हारे दान से मेल खाए और वह भी तुम्हारी पूंजी के अनुसार हो, क्योंकि जहां मन से दिया जाता है वह ग्रहण योग्य होता है। जो तुम्हारे पास है उस आधार पर न कि इस पर कि किसी के पास क्या नहीं है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि तुम्हारे दान से दूसरों को राहत मिले और तुम कमी झेलते बैठो। इस समय तुम्हारी अधिकता से उन लोगों की जरूरतें पूरी होती हैं, ताकि भविष्य में उन लोगों की अधिकता से तुम्हारी जरूरतें पूरी हो सकें और बराबरी हो जाए। जैसा कि लिखा है, जिसने ज्यादा बटोरा उसके पास बहुत ज्यादा नहीं बचा, जिसने कम बटोरा उसके लिए उतना ही काफी था। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि जिस तरह से तुम्हारे लिए मुझे चिंता है ठीक उसी तरह तीतुस को भी है। उसने हमारी यह विनती मान ली कि वह तुम लोगों से मिलेगा। सच्चाई तो यह है कि वह खुद तुम लोगों से मिलने को लालायित था। सुसमाचार सुनाने के संबंध में सभी कलीसियाओं में बहुचर्चित भाई को हम उसके साथ भेज रहे हैं। भेंट पहुंचाए जाने के लिए की गई यात्रा पर जाने के लिए उसे चर्च ने नियुक्त किया, एक सेवा जो प्रभु की महिमा करती है और हमारी मदद करने की लालसा को दिखाती है। ऐसा हमने इसलिए किया ताकि स्वेच्छा दान को लोगों तक पहुंचाने में सावधानी बरती जाए और कोई हमारे ऊपर उंगली न उठा सके। इसलिए कि हमें इस बात की चिंता है कि वही किया जाए जो न केवल प्रभु की दृष्टि में सही है लेकिन मनुष्यों की दृष्टि में भी। हमने उसके साथ अपने भाई को भी भेजा है जिसे बार बार जांचा गया और बहुत सी बातों में जोशीला है। अभी तुम्हारे ऊपर उसको बड़ा भरोसा होने की वजह से उसका जोश भी बढ़ गया है। यदि कोई तीतुस के बारे में पूछे तो वह मेरा साथी और तुम लोगों के लिए मेरा सहकर्मी है। यदि सवाल दूसरे भाइयों का है तो वे मंडलियों के भेजे हुए मसीह को आदर देने वाले हैं। इसलिए अपना प्यार और हमारा वह घमंड जो तुम्हारे बारे में है उसको मंडलियों के सामने सबूत के साथ दिखाओ। दूसरा कुरिंथियों अध्याय 9। मेरे लिए तुमको पवित्र लोगों की इस सेवा के बारे में लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि मदद करने की तुम्हारी लालसा को मैं पहले से ही जानता हूँ। मैं मक्की दुनिया के सभी चर्च में तुम्हारी तारीफ करता रहा हूँ कि एक साल पहले ही तुम यूनान के लोग दान देने के लिए तैयार थे। सच पूछा जाए तो तुम्हारे जोश ने बहुत से विश्वासियों को दान देने के लिए प्रोत्साहित किया। लेकिन मैं इन भाइयों को भेज रहा हूँ ताकि इस बारे में तुम्हारे लिए हमारा आनंद बेकार न ठहरे। जैसा मैंने उनसे कहा है वैसे ही तुम तैयार रहो। इसलिए कि यदि कोई मकिदुनी मेरे साथ आने पर तुम्हें तैयार न पाए तब हमें तुम्हारे ऊपर किए गए विश्वास के कारण शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। इसलिए मैंने यह जरूरी समझा है कि ये भाई पहले ही से तुम्हारे पास आए और तुम्हारे प्रतिज्ञा किए हुए स्वच्छित दान पहले ही से इकट्ठा कर लें। जो इंसान बड़ी मात्रा में बोता है वह बड़ी मात्रा में काटेगा, जो उदारता से बोता है वह ज्यादा काटेगा भी। एक जन जैसा मन में इरादा करता है उसी तरह से दान दे, न ही कुड़कुड़ के न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर प्रसन्नता से देने वाले से प्रेम करते हैं। परमेश्वर सब तरह का अनुग्रह तुम्हें भरपूरी से दे सकते हैं, तब हर समय सब कुछ जो तुम्हारी जरूरत है पूरी होगी और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ होगा, जैसा कि लिखा है,
उसने बहुत दूर बिखराया, उसने गरीबों को दिया, उसके अच्छे कामों को हमेशा तक याद किया जाएगा।
इसलिए परमेश्वर जो बोने वाले को बीज और खाने के लिए रोटी देते हैं, तुम्हें बीज मुहैया कराने के साथ उसे कई गुना बढ़ाएंगे और तुम में उदारता की बड़ी फसल पैदा करेंगे। तुम हर तरह से भरपूर किए जाओगे ताकि हर मौके पर उदार बन सको, और जब हम तुम्हारे दान को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाएं तो वे परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि इस आर्थिक सहायता का काम पवित्र लोगों की मात्र जरूरतों ही को पूरा नहीं करती है, लेकिन आनंद के साथ परमेश्वर को बहुत धन्यवाद दिया जाना भी होता है। इस सेवा का नतीजा ये होगा कि लोग परमेश्वर की बड़ाई करेंगे, इसलिए कि सभी विश्वासियों के लिए तुम्हारी उदारता ये साबित करेगी कि तुम मसीह के सुसमाचार को अपनाकर उसके अधीन रहते हो और उनको तथा सबके लिए उदारता से दान देते हो। वे लोग तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं में याद करते हैं, इसलिए कि तुम पर परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है, तुम्हारी लालसा करते रहते हैं। जिस दान की बड़ाई शब्दों में नहीं की जा सकती, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 10। यीशु मसीह की सी नम्रता और दीनता से मैं तुम लोगों से विनती करता हूं। हालांकि तुम्हारा यह भ्रम है कि व्यक्तिगत रीति से मैं डरपोक हूं, लेकिन लिखी हुई चिट्ठी से बहुत निडर दिखता हूं। ठीक है, तुम में से जो लोग सोचते हैं कि हम सांसारिक तौर तरीके के अनुसार जीते हैं, उनसे मेरी विनती है कि वे झूठे कठोर तरीके से पेश आने पर मजबूर न करें, क्योंकि हालांकि हम इंसान तो हैं, लेकिन हमारी लड़ाई का तरीका दुनिया भी नहीं है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार दुनिया में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार नहीं, लेकिन किलों को तोड़ डालने और झूठे तर्क वितर्क को बर्बाद करने के लिए परमेश्वर द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम परमेश्वर के ज्ञान के विरोध में उठने वाली हर एक कल्पना और हर एक ऊंची बात का खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। जब तुम पूरी तरह से आज्ञा मानने के लिए तैयार हो, तब हम अनाज्ञाकारिता के हर एक काम को दंडित करने के लिए तैयार रहते हैं। तुम्हारी आंखें बाहरी बातों पर हैं। यदि किसी को यह भरोसा है कि वह मसीह का है, तो उसे यह भी जान लेना चाहिए कि जैसा वह मसीह का है, हम भी मसीह के हैं। तुम्हें लग सकता है कि प्रभु द्वारा दिए गए अधिकार के बारे में हम ज्यादा घमंड कर रहे हैं, लेकिन हमारा अधिकार तुम्हारी तरक्की के लिए है, न कि नुकसान के लिए। इसलिए मैं अपने अधिकार के इस्तेमाल के बारे में शर्मिंदा न होऊंगा। अपनी चिट्ठियों से मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूं, क्योंकि कुछ कहते हैं, उसकी चिट्ठियों में वह वजनदार और ताकतवर दिखता है, लेकिन उसके बोलने में कोई दम नहीं है। ऐसे व्यक्ति को ये जान लेना चाहिए कि जब हम आएंगे, तब उतनी ही प्रभावशाली रीति से बातें करेंगे जैसा हम अपनी चिट्ठियों में लिखते हैं। जो ऐसा समझता है, वह यह जान रखे कि जैसे पीठ पीछे चिट्ठियों में हमारे वचन हैं, वैसे ही तुम्हारे सामने हमारे काम होंगे, क्योंकि हमें यह हिम्मत नहीं है कि हम अपने आप को उनमें से ऐसे कुछ के साथ गिनें या अपनी तुलना उनसे करें जो अपनी बड़ाई खुद करते हैं और अपने आप को आपस में नाप तोल कर एक दूसरे से तुलना करके बेवकूफ ठहरते हैं। हम सीमा से बाहर बिल्कुल घमंड नहीं करेंगे, लेकिन उसी सीमा तक जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराई है, इस सीमा में तुम भी शामिल हो और उसी के अनुसार घमंड भी करेंगे, क्योंकि हम अपनी सरहद से बाहर अपने आप को बढ़ाना नहीं चाहते, जैसे कि तुम तक न पहुंचने की हालत में होता, वरन मसीह का सुसमाचार सुनाते हुए तुम तक पहुंच चुके हैं। हम सीमा से बाहर आवश्यकता से अधिक दूसरों की मेहनत पर घमंड नहीं करते, लेकिन हमें उम्मीद है कि जैसे जैसे तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हम अपनी सीमा के अनुसार तुम्हारी वजह से और भी बढ़ते जाएंगे, ताकि हम तुम्हारे पड़ोस के इलाकों तक सुसमाचार ले जा सकें और दूसरों के क्षेत्र में किए गए काम पर गर्व न करें। लेकिन जो गर्व करे तो प्रभु पर करे, क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है वह नहीं, लेकिन जिसकी बड़ाई प्रभु करते हैं वही स्वीकार किया जाता है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 11। मैं चाहता था कि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता में धीरज रखते। हाँ, वैसे तो तुम मेरे साथ धीरजवंत हो, इसलिए कि मैं परमेश्वर किसी जलन तुम्हारे लिए रखता हूँ। मैंने एक पवित्र दुल्हन की तरह तुम्हारी बात यीशु से की है, ताकि तुम्हें पवित्र कुमारी की तरह मसीह को सौंप दूं। लेकिन इस बात का मुझे डर है कि जिस तरह से सांप ने हवा को छला था, तुम्हारे मन मसीह के प्रति शुद्ध और निष्कपट समर्पण से दूर न हो जाए। यदि कोई आकर तुम्हें प्रचार किए गए यीशु मसीह के अलावा किसी और यीशु के बारे में सिखाए, या तुम्हें कोई और आत्मा मिले जो पहले नहीं मिला था, या तुम्हारे द्वारा अपनाए गए सुसमाचार से भिन्न सुसमाचार सुनाए, तो तुम उसे बड़ी आसानी से स्वागत करने के लिए तैयार हो जाते हो। बड़े से बड़े प्रेरितों से मैं अपने आप को कम नहीं समझता हूँ। मैं हालांकि संदेश देने में निपुण नहीं हूँ, फिर भी मैं ज्ञान में कम नहीं हूँ। हर तरह से सभी बातों में हमने ये साफ साफ बता दिया है। वापस बिना कुछ अपेक्षा किए दीनता से सुसमाचार सुनाकर तुम्हें ऊपर उठाकर क्या मैंने गुनाह कर दिया? दूसरी कलीसियाओं से आर्थिक मदद लेकर मैंने तुम्हारी सेवा की। तुम्हारे साथ रहते हुए जब मैं आवश्यकता में था, तब किसी पर भार न बना, क्योंकि मकीदुनिया से आए हुए भाइयों ने मेरी जरूरत को पूरा किया था। मैं न तुम्हारे ऊपर बोझ बना था और न ही बनूंगा। यदि मसीह की सच्चाई मुझ में है, तो अखाया देश में कोई मुझे इस घमंड से न रोकेगा। क्यों? क्या इसलिए कि मैं तुम लोगों से प्रेम नहीं करता? परमेश्वर को मालूम है कि मैं प्रेम करता हूँ। मैं जो कर रहा हूँ करता रहूंगा, ताकि मैं हर एक ऐसे अवसर को खत्म कर सकूं जो वे लोग अपने घमंड की बातों में हमारे समान होने का दावा करते हैं। इसलिए कि ऐसे लोग झूठे प्रेरित, धोखेबाज कार्यकर्ता हैं, जो मसीह के प्रेरितों का रूप धारण करते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि शैतान खुद ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का सा रूप ले लेता है। इसलिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि उसके सेवक मसीह के सेवकों का रूप धारण करें। अंत में उन्हें उनके बुरे कामों की सजा जो मिलनी चाहिए जरूर मिलेगी। मैं फिर कहना चाहूंगा कि कोई ये न समझे कि मैं बेवकूफ हूं, लेकिन अगर समझता है तो कम से कम मुझे बेवकूफ समझकर अपना ले, ताकि मैं भी थोड़ा बहुत घमंड कर सकूं। ऐसा गर्व प्रभु की आज्ञा से नहीं है, लेकिन मैं एक मूर्ख की तरह कह रहा हूं। इसलिए बहुत से लोग सांसारिक, शारीरिक या जिस भी तरह से गर्व करते हैं, मैं भी करूंगा। इसलिए कि तुम इतने अकलमंद हो, तुम बेवकूफों को सह लेते हो। यदि तुम्हें कोई गुलाम बना लेता है, शोषण करता है या फंसा लेता है, या अपने आप को बड़ा बनाता है या चपत लगाता है, तो तुम सह लेते हो। मुझे ये कहते हुए शर्म आती है कि ऐसा करने में हम बहुत कमजोर थे, लेकिन जो कोई भी किसी तरह का घमंड करने की हिम्मत करे, मैं भी उस बात के लिए घमंड कर सकता हूँ। क्या वे इब्री हैं? मैं भी हूँ। क्या वे इसराइली हैं? मैं भी हूँ। क्या वे अब्राहम के वंश के हैं? मैं भी हूँ। क्या वे मसीह के सेवक हैं? मैं पागल की तरह कह रहा हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। ज्यादा मेहनत करने में, बार बार जेल जाने में, घोड़े खाने में, बार बार मौत के जोखिमों में, यहूदियों द्वारा मैंने 5 बार 39 कोड़े खाए, मुझ पर 3 बार डंडे पड़े, मुझ पर 1 बार पथराव किया गया, 3 बार जहाज टूट गए थे, 1 रात मैंने समुद्र में बिताई, बार बार यात्रा में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपनी जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, शहर के खतरों में, जंगल के खतरों में, समुद्र के खतरों में, झूठे भाइयों से खतरों में, कड़ी मेहनत करने में, बिना सोए रातें काटने में, भूख प्यास में, सर्दी में बिना कपड़ों के। इसके अलावा प्रतिदिन सब कलीसियाओं का ख्याल मेरे मन पर बना रहता है। किसकी कमजोरी से मैं कमजोर नहीं होता? किसके ठोकर खाने से मेरा मन नहीं दुखता? यदि मुझे गर्व करना ही है, मैं उन्हीं बातों के लिए करूंगा जो मेरी कमजोरी को दिखाती हैं। प्रभु यीशु मसीह के पिता और परमेश्वर को, जो सदा बड़ाई के लायक हैं, उन्हें पता है कि मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। मुझे पकड़ने के लिए दमिश्क में अरितास राजा के अधीन में नियुक्त गवर्नर ने शहर के दरवाजों पर चौकीदार तैनात किए थे, लेकिन मुझे रस्सी की बनी टोकरी में बैठाकर एक खिड़की से उतारा गया। इस तरह से मैं उसके हाथों से बच निकला। दूसरा कुरिंथियों अध्याय 12। हालांकि घमंड करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन यह जरूरी है कि कुछ बातों में घमंड किया जाए। इसलिए मैं प्रभु द्वारा दिए गए दर्शनों और प्रकाशनों के बारे में बतलाऊंगा। मसीह में एक व्यक्ति को मैं जानता हूं जिसे 14 साल पहले तीसरे स्वर्ग पर उठा लिया गया था। ऐसा देह सहित हुआ था या बिना देह, यह मुझे नहीं मालूम, परमेश्वर को इस बात की जानकारी है। और यह आदमी देह के साथ या देह के बगैर नहीं मालूम, यह तो परमेश्वर ही जानते हैं। स्वर्ग पर उठा लिया गया और वहां ऐसी बातें सुनी जो बयान से बाहर तो हैं ही, उन्हें बताना भी ठीक नहीं है। ऐसे व्यक्ति के बारे में तो मैं गर्व करूंगा, लेकिन जहां खुद का सवाल है, मैं अपनी कमजोरियों को छोड़ और किसी बात पर गर्व न करूंगा। यदि मैं गर्व करूं भी तो मैं मूर्ख न ठहरूंगा, क्योंकि सच ही कहूंगा फिर भी रुक जाता हूं, ताकि ऐसा ना हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझसे सुनता है मुझे उससे बढ़कर समझे। परमेश्वर ने मुझे असाधारण प्रकाशन दिए, इसलिए उनकी वजह से मैं कहीं घमंड से न भर जाऊं। मेरी देह में एक कांटा चुभाया गया, शैतान का एक दूत मुझे पीड़ित करता था ताकि मैं अहंकार से भर न जाऊं। मैं अलग अलग तीन समयों में प्रभु के सामने गिड़गिड़ाया, प्रभु इसे मुझसे दूर कर दीजिए। लेकिन प्रभु यीशु बोले,
मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है, इसलिए कि मेरी सामर्थ निर्बलता ही में ज्यादा काम करती है।
इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी कमजोरियों में गर्व करूंगा, ताकि मसीह की ताकत मुझ में बनी रहे। इसलिए मैं मसीह के लिए कमजोरियों, निंदाओं, गरीबी, सताव और कठिनाइयों में संतुष्ट हूं, क्योंकि जब कभी मैं कमजोर हूं तभी मैं बलवान होता हूं। मैं मूर्ख तो बना, लेकिन तुम ही ने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। तुम्हें तो मेरी बड़ाई करनी चाहिए थी, क्योंकि हालांकि मैं कुछ भी नहीं हूं, फिर भी उन बड़े से बड़े प्रेरितों में से किसी बात में कम नहीं हूं। सचमुच बड़े धीरज के साथ एक प्रेरित के सबूत, चिन्ह, अद्भुत काम और सामर्थ्य काम तुम्हारे बीच दिखाए गए थे। किस बात में तुम दूसरे चर्चों से कम समझे गए? केवल इस बात में कि तुम पर मैं बोझ न हुआ। मेरी इस गलती के लिए मुझे माफ करो। तीसरी बार मैं तुम्हारे यहां आने पर हूं, लेकिन मैं तुम पर बोझ न बनूंगा, इसलिए कि मैं तुम्हारी दौलत नहीं पर तुम्हें चाहता हूं। बच्चों को अपने माता पिता के लिए बचत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन माता पिता बच्चों के लिए बचत करते हैं। अब मैं खुशी से तुम्हारे लिए खर्च करूंगा और खर्च भी हो जाऊंगा। जबकि मैं तुम लोगों से अधिक प्रेम करता हूं, क्या मेरे लिए तुम्हारा प्रेम कम रहेगा? तुम में से कुछ तो ये मानते हैं कि मैं तुम पर बोझ न बना, फिर भी कुछ सोचते हैं कि चालाकी से मैंने तुमसे फायदा उठाया। जिन लोगों को मैंने तुम्हारे पास भेजा था, क्या उनके जरिए से मैंने तुमसे कुछ लाभ उठाया? मैंने तीतुस को जबरदस्ती और साथ में दूसरे भाई को भेजा था, क्या तीतुस ने तुम्हें लाभ का निशाना बनाया था? क्या उसी की तरह हमारा व्यवहार नहीं था और हमारे कदम भी उसी की तरह नहीं थे? शायद तुम लोग यह समझ रहे होंगे कि हम यह सब अपने बचाव के लिए कह रहे हैं। जो कुछ मैं कह रहा हूं वह सब परमेश्वर को मौजूद जानकर मसीह में कह रहा हूं। प्रिय भाइयों, जो हम करते हैं वह सब तुम्हारी तरक्की के लिए है। मेरे भीतर यह डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसा मैं चाहता हूं मेरे आने पर तुम्हें वैसा न पाऊं, और तुम भी जैसी मुझसे आशा कर रहे हो न पाओ। शायद तुम्हारे बीच झगड़ा, फसाद, गुस्सा, विरोध, ईर्ष्या, चुगली, घमंड और बखेड़े हों। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे परमेश्वर फिर से तुम्हारे यहाँ आने पर मुझे दीन करें और मुझे बहुतों के लिए दुखी होना पड़े जिन्होंने पिछले समयों में गुनाह किया और गंदे काम, यौन अनैतिकता और कामुकता को छोड़ा नहीं।
दूसरा कुरिंथियों अध्याय 13। मैं तीसरी बार तुम्हारे यहां आने पर हूं, दो या तीन गवाहों के मुंह से हर एक बात की पुष्टि की जाए।
पिछली बार जब मैं आया था तब भी यही कह रहा था। अब जबकि मैं तुम्हारे बीच हाजिर नहीं हूं, जिन्होंने पहले पाप किया था उनसे और दूसरे सभी लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि मैं फिर आऊंगा तो उन्हें नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि तुम तो इस बात का सबूत चाहते हो कि यीशु मसीह मुझ में होकर बोलते हैं। तुमसे निपटने के लिए वह कमजोर नहीं है लेकिन सामर्थी है। जब वह क्रूस पर चढ़ाए गए थे तब कमजोर दिख रहे थे, लेकिन परमेश्वर की शक्ति से जिंदा हैं। इसलिए कि हम भी उनमें कमजोर हैं, लेकिन हम परमेश्वर की शक्ति से उनके साथ जिएंगे ताकि तुम्हारी सेवा करते रहें। अपने आप को जांचो कि विश्वास में हो या नहीं। अपने आप को परखो। क्या तुम्हें यह नहीं पता कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में असफल साबित हुए हो। मेरी आशा यह है कि तुम यह जान लो कि हम असफल नहीं रहे हैं। हमारी प्रार्थना यह है कि तुम गलत मत करो, इसलिए नहीं कि तुम सिद्ध दिखो, लेकिन इसलिए कि भलाई करो चाहे असफल ही दिखो। इसलिए कि हम सच्चाई के विरोध में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सच्चाई के पक्ष में ही कर सकते हैं। जब हम कमजोर ठहरते हैं लेकिन तुम बलवंत हो, तब हमें खुशी मिलती है। हमारी प्रार्थना यह होती है कि तुम पूरी तरह से योग्य बन जाओ। इसलिए अभी मैं तुम्हारी गैरहाजिरी में लिख रहा हूँ ताकि जब मैं आऊं मुझे अपना अधिकार इस्तेमाल करके तुम्हारे साथ कठोरता से बर्ताव न करना पड़े। परमेश्वर ने मुझे तुमको बनाने के लिए दिया है, न कि बर्बाद करने के लिए। आखिर में भाइयों बहनों, खुश रहो, सिद्ध हो जाओ, हिम्मत रखो, मेल से रहो, और प्रेम एवं शांति के परमेश्वर तुम्हारे संग होंगे। गले लगाते एक दूसरे से मिलो। सभी पवित्र लोग तुम्हें सलाम कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति तुम सभी के साथ रहे।